उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले दो तीन सोमवारों से भगवद गीता के अध्यायों पर प्रमुखता अध्यायों के सार पर चर्चा कर रहे हैं। महाभारत की चर्चा करते करते युद्ध के प्रारंभ की चर्चा हो रही है, तो युद्ध के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता कही। वैसे ये भगवद गीता सारे महाभारत का उद्देश्य है, और महाभारत का उद्देश्य तो है ही, साथ ही साथ सारे जितने भी शास्त्र हैं उनका सार है। जैसे गीता के महात्म्य को लिखते हुए श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो सारे उपनिषद हैं सर्वो उपनिषदो गावो, ये गाय के समान हैं, और इस गाय को दोह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, दोधा गोपाल नंदनः। और जो अर्जुन है वो वत्स की तरह है, वत्स अर्थात जो बच्चा दूध पी रहा है, और उसका जो दूध है गीतामृतम् दुग्धम गीतामृतम् महत्, तो ये जो दूध है ये गीता के रूप में प्रकट हो रहा है। अर्थात अगर सारे शास्त्रों को निचोड़ा जाए, सारे शास्त्रों का सार निकाला जाए, तो भगवद गीता के रूप में प्रकट होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद इस भगवद गीता की भूमिका को लिखते हुए और पहले ही श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता को समझ लेता है तो वो किसी को भी परास्त कर सकता है, क्योंकि भगवद गीता में वो सब कुछ है जो अन्य शास्त्रों में है, और इतना ही नहीं वो भी है जो अन्य शास्त्रों में नहीं है। अर्थात भगवद गीता में जो भी शास्त्र में कहीं पर भी वर्णन है उसका सार के रूप में प्रस्तुत है, और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अन्य शास्त्रों में नहीं है। इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है भगवद गीता। हम लोगों ने इस पर चर्चा प्रारंभ की थी, पहले अध्याय के विभागों को सुना, कैसे पहले अध्याय में पहले कुछ श्लोकों में दुर्योधन की कूटनीति प्रकट होती है, उसके बाद पांडवों की विजय के चिन्ह प्रकट होते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने सुना कैसे भगवान का भक्त वत्सल रूप प्रकट होता है, और उसके बाद अर्जुन ने अलग अलग कारण, पिछले सोमवार को आप सब ने अलग अलग कारण सुने जो अर्जुन ने दिए युद्ध नहीं करने के। तो देखिए अर्जुन जैसा योद्धा, आप स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। ये वो अर्जुन है जो 13 वर्षों से केवल इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब युद्ध होगा। जल रहा था वो उस अग्नि में, रात दिन बारंबार उस दृश्य को याद करता था जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। बार बार वो अपने साथ हुए अन्यायों को याद करता था, जलाने का प्रयास किया गया, मार डालने का प्रयास किया गया, अपमान करने का प्रयास किया गया, उनका सब कुछ छीन कर उनको भेज दिया गया। तो ये सारी चीजें अर्जुन बारंबार याद करता था। आप सोचिए अर्जुन क्यों बार बार याद करता था, क्योंकि अर्जुन इतना बड़ा योद्धा था तो वो याद कर रहा था कि मेरे अंदर शक्ति होते हुए भी मुझे ये सब सहन करना पड़ा। कभी कोई बड़ा कमजोर व्यक्ति होता है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, उसको पता है मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्या मारूंगा इन लोगों को, इसलिए चुपचाप बैठा रहता है वो। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं था, अर्जुन वहीं उसी क्षण सबको समाप्त कर सकता था, और ये अर्जुन ने दिखलाया भी। कभी कभी लोग भ्रमित होकर महाभारत के विषय में कहते हैं कि कर्ण ज्यादा शक्तिशाली था, अर्जुन को उनके गुरु ने बहुत ज्यादा फेवर कर दिया, या अर्जुन में इतनी शक्ति नहीं थी, वो तो धोखे से मार दिया इत्यादि। लेकिन ऐसा नहीं है, अर्जुन की शक्ति ये सारे जितने भी योद्धा थे उन सब के सामने ज्यादा थी, उसकी युद्ध कला, उसकी शक्ति। और इसको कई बार कौरवों की सभा में कहा गया, जिस समय युद्ध प्रारंभ होने वाला था कर्ण ने घोषणा की कि क्यों इतना आप घबरा रहे हैं पांडवों से, मैं उनका वध कर दूंगा, मैं अर्जुन का वध करूंगा। भीष्माचार्य ने कहा कर्ण चुपचाप बैठ जाओ, विराट युद्ध में अभी अभी 13 वर्ष पूरे होते ही एक युद्ध हुआ था, विराट की राजा विराट की नगरी पर आक्रमण कर दिया था कौरवों ने अपनी सारी सेना के साथ, जिसमें सब थे कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, दुर्योधन, दुशासन, सब बड़े बड़े महारथी, और अर्जुन अकेला था, कोई सेना नहीं थी अर्जुन के साथ, क्योंकि इन्होंने धोखा किया था। इनको पता चल गया कि क्योंकि शायद पांडव यहां हैं, तो उन्होंने दो तरफ से आक्रमण कराया, कुछ लोगों को बोला आप उधर से जाके आक्रमण कीजिए तो सारी सेना वहां जाएगी, हम दूसरी तरफ से आक्रमण करेंगे, और यही किया। तो दूसरी तरफ बचाने के लिए अकेला अर्जुन बचा था। भीष्म कर्ण को याद दिला रहे कि अकेले अर्जुन ने हम सबको परास्त कर दिया था, अब तो उसके साथ सेना है, अब तो उसके साथ सारे योद्धा हैं, उसके भाई हैं, उस समय कोई नहीं था। तो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, और उसका शोक करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ऐसे व्यक्ति का शोक करना जो बहुत कमजोर हो, जिसके वो जो शक्तिहीन हो, वो कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि मान लिया जाता है उसके अंदर शक्ति नहीं है, इसीलिए वो शोक कर रहा है। लेकिन जिसके अंदर शक्ति है उसे शोक नहीं करना चाहिए, उसे शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में जिसके अंदर भगवत ज्ञान का बल आ जाता है वो शोक नहीं करता, वो शोक से परे हो जाता है। तो दोनों दृष्टि में अगर हम भौतिक दृष्टि में देखें तो भौतिक दृष्टि से जिसके पास शारीरिक बल है वो शोक नहीं करता, साधारणता उसको शोक नहीं करना चाहिए, वो अपनी शक्ति धन या बल से प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसी तरह आध्यात्मिक स्तर पर जिसके पास आध्यात्मिक बल है, ज्ञान का बल है, वो व्यक्ति भी शोक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है ये शोक करने चीज लायक चीजें नहीं है। अशोचानन व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्यसे, भगवान यही कहते हैं दूसरे अध्याय में अर्जुन को, शोक करने योग्य नहीं है वो चीज। तो इसलिए अर्जुन का शोक में आना ये बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि वो सबसे शक्तिशाली। तो 13 वर्ष तक जो व्यक्ति इंतजार कर रहा था कब ये समय आए, आज वो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध नहीं करूंगा इतना ही नहीं, मारूंगा नहीं इन्हें, अगर ये मुझे मारना चाहे मैं निहत्ता खड़ा रहूंगा, मारने दीजिए मुझे। कैसे ये बदलाव आ सकता है अर्जुन में अचानक? 13 साल से जो जल रहा था, 13 ही नहीं बचपन से कहना चाहिए, 13 साल में तो बढ़ गया था, कैसे ये बदलाव आ गया, क्या हुआ अर्जुन में? एक कारण भगवान की योजना, भगवान की योजना, भगवान के द्वारा वो मोह में डाला गया। अन्यथा कोई व्यक्ति इतने ऊंचे स्तर पर होते हुए इस तरह का शोक नहीं करता। शोक ही नहीं, रो रहा था अर्जुन। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही संजय कहता है तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, वो बता रहा है कि अर्जुन की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, रोने लगा अर्जुन अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। तो केवल शोक नहीं कर रहा था, एक ऐसे शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पृथ्वी पर उसके लिए आंखों में आंसू लाना कितनी बड़ी बात है। तो ये भगवान की योजना थी, क्योंकि भगवान इस भगवद गीता को प्रकट करना चाहते। भगवान जब कोई महान कार्य करना चाहते हैं तो अपने भक्तों का उपयोग करते हैं। परीक्षित महाराज का उपयोग भागवत को प्रकट कराने के लिए किया, अर्जुन का उपयोग भगवद गीता को प्रकट कराने के लिए किया। और क्या संदेश देना चाहते हैं वो इस दूसरे अध्याय में भगवान ने पूरा संदेश दे दिया। दूसरे अध्याय को गीता का सार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गीता का सार? क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने पूरी भगवद गीता कह दी। अगर अर्जुन प्रश्न नहीं करता तीसरे अध्याय में तो भगवान आगे बोलने वाले नहीं थे, भगवान को जो कहना था कह दिया था, लेकिन वो सब संक्षेप में कहा था भगवान ने, और अर्जुन उसको और अच्छी तरह समझना चाहते थे, इसीलिए आगे के और 16 अध्यायों की आवश्यकता पड़ी। तो भगवद गीता में अर्जुन जब ये दुखी अवस्था में हैं, इस भ्रम की अवस्था में हैं, और पहले ही अध्याय में उन्होंने इस भ्रम को प्रकट कर दिया कि क्या मैं क्या करूं, और अब दूसरे अध्याय में जब उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, उनके हाथ से उनका ही धनुष छूट रहा है और सारा जो शरीर है वो कंपित हो रहा है, उनके अंदर शक्ति नहीं है खड़े होने की। यही अर्जुन अभी आज से लेकर 18 दिन तक युद्ध करेगा और ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करेगा कि सब हैरान रह जाएंगे, लेकिन आज इसके पांव में खड़े रहने की शक्ति नहीं। और तब भगवद गीता का ज्ञान भगवान देते हैं। तो इस दूसरे अध्याय में सारी भगवद गीता भगवान ने कही है। पहले 10 श्लोकों में वर्णन किया गया कि भगवद गीता को अगर कोई समझना चाहता है, जैसे हम बता रहे कि दूसरे अध्याय में सब कुछ दिया है भगवान ने, तो पहले 10 श्लोकों में उन्होंने दिया योग्यता उस व्यक्ति की जो भगवद गीता समझ सकता है। पहले 10 श्लोकों में अर्जुन के और थोड़े संशय प्रकट होते हैं, 6 श्लोक में अर्जुन संशय प्रकट करते हैं और फिर अर्जुन समर्पण करते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति की योग्यता जो भगवद गीता समझना चाहता है, उसकी पहली योग्यता है कि उसको इस भौतिक जगत की चीजों के प्रति जिज्ञासा या संशय होना चाहिए। उसको समझ में नहीं आना जा आ रहा था अर्जुन को, मैं क्या करूं, इसीलिए वो कहता है कि मुझे नहीं पता क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। युद्ध करूं तो स्वर्ग में जाऊं, लेकिन अगर युद्ध करके सबको मार दूं तो मुझे आनंद नहीं आएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इनडिसीजन, निर्णय नहीं ले पाना, ये पहली योग्यता है कि जब हम इस अवस्था में आए कि हम निर्णय नहीं ले पाए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये जीवन क्या है, मुझे कैसे जीना है, क्या केवल खाना पीना सोना यही जीवन है, इसके परे कुछ और है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं जानना चाहता हूं, ये पहली योग्यता है। और दूसरी योग्यता जो दी गई सातवें श्लोक में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, उसमें कहा गया कि दूसरी योग्यता है उस व्यक्ति के लिए जो भगवद्गीता समझना चाहता है, एक गुरु को समर्पण, ये जान लेना कि मेरे लिए इस जगत में और कोई आश्रय नहीं है कृष्ण के अलावा। जब व्यक्ति ये समझ जाएगा वो भगवद्गीता को समझने का योग्य अधिकारी है, अन्यथा भगवद्गीता समझना कठिन है। अर्जुन ने भी भगवद्गीता तभी समझी जब उसने समर्पण किया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अपनी बुद्धि को परे रख रहा हूं। अब पहले अध्याय में उसने अपनी बुद्धि प्रकट की, अपना ज्ञान प्रकट किया, अर्जुन ने सब कुछ कह दिया, धर्म के आधार पर, धर्म शास्त्रों के आधार पर, पारिवारिक परंपराओं के आधार पर, सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर सब कुछ कह दिया, लेकिन अब अर्जुन ने उस सबको हटा दिया। उसने कहा कार्पण्य दोषपह तस्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़चेता, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसीलिए शिष्यस्ते हम शाधिमान कृपण। तो जब एक व्यक्ति अपने सारे भौतिक ज्ञान को अलग हटाकर इस अवस्था में कि अगर मुझे कुछ ज्ञान चाहिए तो गुरु प्रदान कर सकते और मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, इस अवस्था में जब गुरु के पास जाता है उसको ज्ञान मिलता है। ज्ञान अहंकार से नहीं आता है, अहंकार ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान आता है नम्रता से। एक नम्र व्यक्ति ज्ञान ले सकता है क्योंकि ज्ञान लेने के लिए झुकना होता है, ज्ञान ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता, तो इसीलिए हमें नम्रता चाहिए जो अर्जुन दिखला रहे हैं। तो ये दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ये वर्णन है कि किस तरह श्री कृष्ण के प्रति समर्पण जीवन का उद्देश्य है, और जब तक इसको नहीं किया जाता, अर्जुन ने बहुत कुछ कह लिया, धर्मशास्त्रों का वर्णन कर दिया, दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र और उनसे परे भक्ति शास्त्र। तो अर्जुन सारे अपने जो विवाद वाद कह रहा था ये बताकर कि धर्म के अनुसार ये सही है गलत है इत्यादि, लेकिन भगवान भगवद्गीता में स्थापित करते हैं कि साधारण धर्म से परे एक ऐसा धर्म है जो जीव का सच्चा कर्तव्य है, और वो है भगवत धर्म, भक्ति का धर्म, भगवान की भक्ति, भगवान को समर्पण। और ये धर्म बाकी सारे धर्मों से ऊपर है, इसीलिए भगवत गीता के अंत में भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, परित्यज्य मतलब फेंक दो, उठाकर छोड़ दो ये सब धर्मों को। किन धर्मों को? सारी भगवत गीता में भगवान धर्म की बात करते और अंत में कहते धर्मों को छोड़ दो। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रजा, ऐसे सारे धर्म जो मेरी शरण में आने में बाधक हैं त्याग दो, परित्यज्य माम एकम शरणम रजा, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, वही शरण आना आपको सारे पापों से मुक्त कर सकता है और निर्भय भी वही बनाता है। मा शुचः, भगवान अर्जुन को कहते डरो नहीं, तो निर्भय भी वही बनाता है, पाप मुक्त भी वही बनाता है, जीवन का उद्देश्य वही है, सच्चा आनंद वही लाता है जब हम भगवान को समर्पण करते हैं। तो अर्जुन ये समर्पण करते हैं। तो पहले 10 श्लोकों में दूसरे अध्याय के यही बातें कही गई हैं कि किस तरह भगवान को समर्पण की आवश्यकता। फिर 11वें श्लोक से लेकर आगे 30वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान दिया, अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो उन्होंने ज्ञान के आधार पर अर्जुन को प्रेरणा दी युद्ध करने। पहले तो डांटा भगवान ने, क्योंकि अर्जुन को डांटना भी आवश्यक था। अर्जुन सोच रहे थे मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, बहुत ज्ञान है मुझे। भगवान ने कहा सब मूर्ख हो तुम, अशोचानन्वशोच स्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश नान शोचन्ति पंडिता। जो पंडित होते हैं वो शोक नहीं करते तुम्हारी तरह, तुम अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझ रहे हो, तुम मूर्ख एकदम। और क्यों मूर्ख हो, फिर भगवान अब इसमें बताना शुरू करते हैं जब वो ज्ञान कांड का वर्णन करते हैं कि किस तरह से एक जो व्यक्ति है जो सही ज्ञान में है वो क्या क्या समझता है। तो भगवान अर्जुन को मूलतः ये बता रहे हैं कि तुम्हें शोक क्यों नहीं करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। अर्जुन के कई मन में आए हुए प्रश्नों का भगवान एक श्लोक के बाद एक उत्तर देते जाते हैं। जो भी प्रश्न अर्जुन के मन में आ रहे हैं, पहले भगवान ने कहा कि तुम क्यों शोक कर रहे हो इन चीजों के लिए, ये शरीर है इसके लिए शोक करना आवश्यक नहीं है, नहीं करना चाहिए, शरीर का तो नाश होने वाला है, और वैसे भी आत्मा है, आत्मा का नाश नहीं होता, तो तुम क्यों शोक कर रहे हो। तो मानिए अर्जुन के मन में प्रश्न आए कि ठीक है आत्मा के जाने का शोक नहीं है, लेकिन शरीर के जाने का शोक तो होता है ना। अरे जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे साथ में रहता है, तो उसके वो भले वो शरीर हो, लेकिन वो शरीर के जाने का भी तो दुख होता है। आप बोल रहे दुख नहीं करें, तो भगवान कहते हैं कि शरीर तो वैसे भी जाता है। आप बच्चे थे, आपका शरीर चला गया ना, अभी आपने शोक किया। व्यक्ति छोटा होता है, बालक बड़ा हो जाता है, उसका बचपन का शरीर चला जाता है, रोता है व्यक्ति। फिर वो युवा अवस्था से वृद्ध हो जाता है तो रोता है व्यक्ति, हाय हाय, तो वो तो जाना ही है। तो जब आप तब शोक नहीं करते, आप क्यों शोक कर रहे हो। तो मानो अर्जुन ने कहा हो कि हाँ ये तो सही है, लेकिन फिर भी जब युवा अवस्था चली जाती है, बुढ़ापा आता है, थोड़ा तो दुख होता है ना, होता है कि नहीं। बूढ़े लोगों को पूछना चाहिए, अभी हम लोग तो अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते, हो गए लेकिन समझते नहीं हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं उनको पूछना चाहिए, वो बताएं। यहाँ सब यंग लोग बैठे हैं इसलिए किसी को समझ नहीं आएगा, बूढ़े लोगों से पूछना चाहिए कितना कष्ट होता है। याद आता है वो, कितना बच्चों को भागते हुए देखते हुए, मैं भी कभी भागा करता था, अभी तो जरा सा भागे बैक पेन हो जाता है 10 दिन बेड पर। तो अर्जुन का प्रश्न कि भाई ठीक है लेकिन उसमें भी तो दुख होता है, तो भगवान कहते फिर क्यों चिंता करते हो, अरे ये सब मरेंगे, इसके बाद तो इनको अच्छा शरीर मिलेगा, अभी तो बूढ़े हैं, द्रोणाचार्य भीष्म ये सब तो बूढ़े हो गए, अभी अब उसके बाद क्या होगा, नया शरीर मिलेगा, कपड़े बदलते हैं जैसे वैसे नया शरीर मिलेगा इन्हें, तो खुश होना चाहिए। जब नए कपड़े पहनते हो खुश होते हो ना, आप लोग कभी नए कपड़े लाते हैं तो कभी दुखी होकर पहनते कि रोते हुए कि हाय हाय नया कपड़ा पहनना पड़ रहा है, बड़े प्रसन्नता से। तो भगवान कहते तो खुश हो जाओ, भीष्म और द्रोणाचार्य को नया कपड़ा मिलने वाला है, फिर भी रोने की क्या जरूरत है तुम्हें। और अगर तुम ये मानते हो कि ये आत्मा वगैरह का कोई विषय नहीं है, आत्मा आत्मा नहीं होती, सब कुछ शरीर है, ऐसे कई दार्शनिक हैं, वे लोग ये मानते हैं कि आत्मा का कुछ अस्तित्व नहीं, जो है शरीर है, पहले कुछ नहीं था आगे कुछ नहीं होगा। जैसे वो उदाहरण देते कि एक एक मान लीजिए एक मैदान है, साफ मैदान, उसमें कोई आकर एक बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग बनने से पहले कुछ नहीं था, थोड़े समय बाद बिल्डिंग टूटकर गिर जाती है, बिल्डिंग गिरने के बाद कुछ नहीं, तो ना बिल्डिंग बनने के पहले कुछ था ना बिल्डिंग बनने के बाद कुछ है, इसी तरह ये जो शरीर है इसके पहले कुछ नहीं था इसके बाद कुछ नहीं होगा जो है बस ये बीच में है थोड़ा सा आपका समय भगवान कहते हैं अगर इस बात को भी मानते हो फिर शोक क्यों करना शरीर तो वैसे खत्म होने वाला ही है ना अगर केमिकल से बना है लोग कहते हैं ना कि ये जो शरीर है ये केवल रसायनों से बना हुआ है हम कई बार इस बात को कहते हैं वो जो वैज्ञानिक होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि ये शरीर में कुछ आत्मा वगैरह नहीं है ये सब बकवास है इसमें केवल रसायन है दो रसायन मिलते हैं आप हंसने लगते हो दो अभी हम हंस रहे हैं शायद रसायन मिले होंगे अंदर कोई थोड़े दो रसायन और मिलते हैं व्यक्ति रोने लगता है कुछ और चेंजेस होता है व्यक्ति की भावनाएं बदल जाती बस इतना ही है वो कहते हैं तो ये सारा रसायनों का खेल है केमिकल्स का खेल है सब खत्म हो जाता है तो भगवान कहते हैं अगर सारा केमिकल का खेल है तो इस केमिकल के थैले के लिए रोने की क्या जरूरत है वैसे केमिकल है ना कुछ है ही नहीं उसमें अभी आप समझ लीजिए बाहर से बाजार से एक थैला खरीद के लाते हैं उसमें थोड़े केमिकल है गिर गया फूट गया हो गया ठीक है थोड़ा दुख होता है मगर थोड़ी ना कुछ रोता है उसके लिए तो क्यों रोना है तो ऐसे कह कह के भगवान ने ज्ञान दिया पूरे इस विभाग में 30 श्लोक तक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं ये आधार हैं आध्यात्मिक ज्ञान के जब हम अध्यात्म की बात करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की जिसको हम साधारण धर्म से अलग करना चाहते हैं तो उसका प्रारंभ इस ज्ञान से होता है जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है आध्यात्मिकता कहां से आएगी शरीर के स्तर पर किए गए धार्मिक कार्य आध्यात्मिकता नहीं है ये जान लीजिए कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम जो शरीर के स्तर पर धर्म कर रहे हैं कुछ पूजा पाठ करा देना कुछ दान धर्म कर देना हफ्ते में 15 दिन महीने में एक बार मंदिर चले जाना बस यही तो सच्चा धर्म है यही आध्यात्मिकता है यही भक्ति है ये भक्ति नहीं है ये तो केवल इस तरह है कि आप शरीर को बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत किसी को कमीशन दे रहे हैं कुछ पैसा दे रहे हैं ताकि शरीर आपका बना रहे एक आध यज्ञ कर लिया थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे घर में कष्ट नहीं आए उसमें आध्यात्मिकता कहाँ है आध्यात्मिकता तो प्रारंभ होती है जब आध्यात्मिक स्फुलिंग आत्मा का वर्णन आता है तब से आध्यात्मिकता प्रारंभ होती है और इसीलिए भगवान भगवद गीता के प्रारंभ का पहला ज्ञान जो भगवान ने दिया आत्मा का ज्ञान दिया बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है हम सबको ये ज्ञान लेना चाहिए जानना चाहिए कि हर शरीर में आत्मा है अब आत्मा शब्द सुनकर घबराइएगा मत क्योंकि ज्यादातर लोग आत्मा शब्द सुनकर घबरा जाते हैं है ना आत्मा भटकती आत्मा समथिंग लाइक हम सब के शरीर में वही है हम सब वही है ऑफकोर्स हम लोग बोलते नहीं है वो अलग बात है जैसे आप लोग जब एक दूसरे को मिलते हो तो आप पूछते हो आपके घर में कैसे हैं आप क्या पूछते हो आपके घर के सारे शरीर कैसे हैं हाउ इज एवरी बॉडी राइट आपके शरीर का आपके घर का हर शरीर कैसा है यही पूछते हो ना ज़्यादातर इंग्लिश में ही पूछा जाता है हाउ इज एवरी बॉडी हर शरीर कैसा है आपके घर में आज से आप ये मत पूछिएगा आज से पूछिएगा आपके शरीर की आपके घर में जितनी आत्माएं हैं कैसी हैं राइट व्यक्ति घबरा जाएगा अरे मेरे घर में भूत भरे पड़े लेकिन सच तो यही है पूछना तो ये चाहिए कि आपके घर की सारी आत्माएं कैसी हैं तो ये ज्ञान भगवान ने दिया तो ये आधार है आध्यात्मिक ज्ञान का इसीलिए भगवद गीता के प्रारंभ का ज्ञान भगवान ने पहला ही ज्ञान वो दिया और ये एक गुरु के लिए आवश्यक है भगवान ने पहले डांटा और फिर सही ज्ञान दिया गुरु कौन है जो इधर उधर घुमा फिरा के बातें नहीं करे सीधा ज्ञान भगवान ने सीधा अर्जुन को ज्ञान दिया उसके सारे जितने भी वो वाद दे रहा था उसका खंडन कर दिया भगवान ने कि अर्जुन कह रहा था कि करुणा करनी चाहिए अर्जुन के युद्ध ना करने के कारणों में एक कारण था करुणा अर्जुन करुणा दिखा रहा था कि अरे क्या लाभ है एक भूमि के टुकड़े के लिए हम इतने लोगों को मार दें, ये तो कोई साधु का स्वभाव नहीं है। प्रभुपाद इसी अध्याय के छठे श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो अर्जुन के भाव हैं, साधु के भाव, ये साधु के लक्षण हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता इतनी शक्ति होते हुए। हाँ, जैसे हम पहले बता रहे थे, जिसमें शक्ति नहीं हो वो कहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो लोग बोलेंगे वैसे भी हारने वाले हैं, अच्छा मत करो बच जाओगे। लेकिन जब अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा तो बड़ी बात है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये साधु के लक्षण है, क्योंकि जो जीत सकता है, सबको हरा सकता है, वो कह रहा है कि मैं अनावश्यक युद्ध नहीं करूंगा, ये साधु के लक्षण है ना। जैसे किसी के पास बहुत धन हो, करोड़पति व्यक्ति हो, और वो कहे कि नहीं मैं सब वैराग्य ले रहा हूँ, ये सब छोड़ रहा हूँ मैं, सारा धन सारे संपत्ति, तो लोग कहेंगे कोई बड़ी बात। अब एक भिखारी कहे कि मैं वैराग्य ले रहा सब छोड़ रहा, है क्या तुम्हारे पास छोड़ने के लिए जो वैराग्य ले रहे? तो इसी तरह जब अर्जुन, तो प्रभुपाद लिखते हैं ये साधु के लक्षण है, ये उसका वैराग्य है कि अंदर शक्ति होते हुए भी वो कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसके साधु के लक्षण। तो प्रभुपाद कुछ योग्यताओं को लिखते हैं जो मुक्ति के लिए आवश्यक है। पहली योग्यता वो देते हैं कि गुरु के शब्दों में विश्वास। अर्जुन को श्री कृष्ण के शब्दों में पूर्ण विश्वास था, जो जो अब वो कहेंगे अर्जुन शंका नहीं करता, प्रश्न जरूर पूछा अर्जुन ने। देखिए दो चीजें होती हैं, शंका करना और प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने में कोई गलती नहीं है कि अगर हमें कुछ समझ नहीं आया हम पूछे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शंका करना कि भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवम अतः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मुझसे आता है, ये सच है या बहुत ज़्यादा हो गया? अर्जुन ने शंका नहीं की किसी भी समय। हाँ, प्रश्न पूछे उसने अर्जुन ने। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम्हें आगे के अध्यायों में आएगा कि भगवान ने भक्ति का वर्णन किया और कहा कि ये सब छोड़ना चाहिए, व्यक्ति को इस सब में समान होना चाहिए, तो अर्जुन ने कहा युद्ध करूं कि नहीं करूं? एक तरफ आप बोलते हो युद्ध करो, दूसरी तरफ बोलते हो वैराग्य लो, अरे करूं क्या फिर, आप युद्ध में क्यों लगा रहे हो मुझे, तो मैं चला जाता हूं। तो ये सारी चीज़ें, प्रश्न पूछने में कोई गलती नहीं। लेकिन अर्जुन ने कभी संशय नहीं किया कि ये जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है, जो भी उन्होंने कहा अर्जुन ने विश्वास किया। तो गुरु के शब्दों में विश्वास, ये पहली योग्यता है व्यक्ति के मुक्त होने के लिए। दूसरी योग्यता प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें इंद्रियों को वश में करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन की पूर्ण इंद्रियां वश में थी। और इसके उदाहरण तो हम लोग पहले भी सुन चुके हैं महाभारत में, जब अर्जुन स्वर्ग में गए, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी जो बहुत सुंदर हैं, अर्थात वहां रहने वाली अप्सराओं में भी वो ज़्यादा सुंदर है। वैसे तो अप्सराएं ही सुंदर होती हैं, जैसे कई बार हम कह चुके ना कि यहाँ की जो भी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस जो भी हों, उनकी अगर तुलना देवलोकों की नौकरानियों से की जाए तो यहाँ की मिस वर्ल्ड कॉकरोच के समान लगेगी उनके सामने, इतनी सुंदरता उनकी देवलोकों की नौकरानियों की है। और फिर उनमें अप्सराएं, और अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी, आप सोचिए क्या सौंदर्य होगा, मतलब मत सोचिए, आवश्यकता नहीं है सोचने की। तो बड़ी सुंदर, और वो अर्जुन को आकर कह रही है कि, अर्जुन के पास आती है कि अर्जुन तुमसे संग करना है, तुम्हारे साथ रहना है। अर्जुन ने कहा मैंने तो आपको माता के रूप में देखा, वो कहती ये स्वर्ग है, हाँ ये सब नहीं होता, माता वाता ये सब नहीं, यहाँ केवल आनंद लेने के लिए आते हैं, तो तुम चिंता मत करो। अर्जुन कहने लगा आप तो मेरी माता के समान है, आपने मेरे पूर्वजों के साथ, मैंने पढ़ा है कि आप पूर्वज जब मेरे थे तो आप आई थी, तो आप तो मेरी माता है। बोले वो सब भूल जाओ, वो सब नीचे के रूल हैं, ये स्वर्ग है, यहाँ कोई नियम नहीं चलता। लेकिन उस समय भी अर्जुन अपने स्थान से हिले नहीं। अर्जुन ने ये नहीं सोचा कि ठीक है वो तो नीचे का नियम है, जब नीचे जाऊँगा नियम पालन करूँगा, यहाँ तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ वही कह रही हैं, नहीं। तो पूर्ण वश में थी इंद्रियां अर्जुन के। तो ये दूसरी योग्यता श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु के शब्दों में विश्वास हो, इंद्रियां वश में हो व्यक्ति के, और उसके हृदय में वैराग्य हो, जैसे अर्जुन के था। अर्जुन कह रहे मुझे नहीं चाहिए ये जो भूमि है, मुझे नहीं चाहिए ये राज्य, नहीं चाहिए, वैराग्य है। अर्जुन कह रहे क्या करूंगा ये सब लेकर। और प्रभुपाद कहते जब व्यक्ति के हृदय में ये है तो ज्ञान आना, और ज्ञान के आधार पर भक्ति का उत्पन्न होना, ये मुक्ति के लिए आवश्यक है। प्रभुपाद कहते जब तक इंद्रिय वश में नहीं है ज्ञान के स्तर पर उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान के और भक्ति के मुक्ति पाना असंभव है। इसीलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद कहते हैं। तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुमने जो साधुत्व की बात की, तुमने जो बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बात की, अब सब भूल जाओ, अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि कभी किसी बड़े व्यक्ति के पास आप जाइए, वो उसके पास बड़ी डिग्री है, बहुत कुछ है, वो बोले ये वो उधर उधर की बात सब सुन लीजिए, फिर उसको कहिए कि बहुत अच्छा अब आप ये सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। तो अर्जुन को भगवान वही कह रहे हैं, बहुत तुमने कह लिया, बड़े पंडित बन गए, अब सुनो मैं जो कह रहा हूँ। तो भगवान ने ये ज्ञान दिया आधार आध्यात्मिकता का। तो ये जान लीजिए साधारण धर्म का पालन करके व्यक्ति केवल अपने जन्मों को बढ़ा सकता है, इस जन्म को अच्छा करे। कई बार लोग कहते हैं आगे 7 जन्मों को अच्छा करने चाहते हैं, मूर्ख व्यक्ति है। 7 जन्म अच्छा करना चाहता है मतलब 7 जन्म चाहता है। जैसे कभी कभी लोग विवाह करते हैं ना, वो 7 फेरे लेते, बोले 7 जन्म का चक्कर हो गया, बोले 1 जन्म तो होता नहीं 7 जन्म के लिए, तो मूर्खता है। अगर हम कई बार लोग कहते हैं हम आपका अगला जन्म अच्छा कर रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं, हमें जन्म ही नहीं चाहिए। ये आध्यात्मिकता सिखलाती है। सो धर्म सिखलाता है आप अच्छे कार्य करो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, आध्यात्मिकता सिखलाती है आप ऐसे कार्य करो अगला जन्म ही नहीं मिले, ये आध्यात्मिकता। तो इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि हम ऐसे कार्य करें जिनमें अगला जन्म नहीं लेना पड़े। तो अर्जुन को भगवान अब वो चीज़ें सिखला रहे हैं। तो उन्होंने करीब 30 श्लोक तक ये सारे उसके उत्तर दे दिए कि तुम अगर सोच रहे हो कि करुणा मैं करना चाहता हूँ, हृदय में मेरे करुणा है, तो सच्ची करुणा करो, आत्मा के प्रति करुणा करो। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है जल में, कोट पहना हुआ है, गिर गया, अब वो डूब रहा है, आप जाओ और उसके कोट को निकाल कर ले आओ और बोलो मैंने बड़ा काम किया। तो क्या काम किया, व्यक्ति तो डूब गया, कोट को बचा के क्या लाभ है। इसी तरह ये शरीर केवल कोट के समान है, कपड़ों के समान है। अगर व्यक्ति डूब रहा है इस भवसागर में, उसके शरीर को बचाना उसके कपड़ों को बचाने के समान है, उसको बचाइए। और आत्मा को बचाया जाता है आध्यात्मिक ज्ञान से, आत्मा को बचाया जाता है उसको भगवान के निकट लाकर, उसको भक्ति में लगाकर। बाकी सारे जो शरीर के स्तर पर कार्य हैं ये कपड़ों को बचाना है। इसीलिए अर्जुन की जो ये करुणा थी वो करुणा थी लेकिन गलत जगह पर, ये भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारी करुणा जो है शरीर के लिए ये गलत जगह पर है, अपनी करुणा का सही इस्तेमाल करो जैसे प्रभुपाद ने किया। हाँ, ये भगवान भगवद्गीता में नहीं कह रहे, ये हम कह रहे हैं जैसे प्रभुपाद ने किया करुणा का इस्तेमाल। प्रभुपाद गए अमेरिका में, उन्होंने किसी शरीर को बचाने का प्रयास नहीं किया और ना ही उन्होंने लोगों को शरीर के स्तर पर देखा कि अमेरिका के लोग हैं, मैं केवल हिंदुओं के पास जाऊंगा इत्यादि, कुछ नहीं। सच्ची करुणा उन्होंने दिखाई आत्मा के प्रति, उन्होंने हर जीव को भक्ति में लगाया, जो मिला उनसे प्रभुपाद यही चाहते थे कि वो भगवान की भक्ति में लगे, ये सच्ची करुणा है। तो कई बार करुणा का प्रदर्शन लोग कुछ खाना बांट कर देते हैं, कपड़े बांट कर देते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमने जीव को इस समय इस व्यक्तियों को कपड़ा दे दिया, खाना दे दिया, कुछ उनकी बीमारी दूर कर दी। कई ऐसे लोग हैं बड़े बड़े संस्था खोले हुए हैं, बड़े बीमारों की सेवा करते हैं, अच्छी बात है, कोई पाप नहीं है, कोई गलती नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन पूर्णता नहीं है। दो चीजें हैं, अच्छे कार्य करना और पूर्ण कार्य करना। तो हम लोगों को कपड़े बांटना, उनके बीमारी दूर करना, उनका ये सब करना ठीक है, क्या कर रहे हो आप? उनको ज्ञान देना कि शरीर है ही नहीं, आप आत्मा हो, उनको कृष्ण के निकट लाना, ये सच्ची करुणा है। अगर किसी पर करुणा दिखाना चाहते हैं तो केवल उसे खाना मत दीजिए, केवल उसे कपड़े मत दीजिए, केवल उसकी बीमारी दूर मत कीजिए, उसके साथ साथ उसे भगवान से जोड़िए, ये सच्ची करुणा है। भगवान के भक्त सच्ची करुणा को प्रदर्शित करते हैं, जो घर घर जाकर लोगों को भगवान का संदेश देते हैं, घर घर जाकर उनको सेवा में लगा, ये सच्ची करुणा है। करुणा ये नहीं है कि हम उसके शरीर को बचाएं, क्या होगा शरीर को बचाकर, फिर दूसरा जन्म लेगा, फिर मरेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसीलिए आत्मा को बचाएंगे। भगवान ने ये ज्ञान 30वें श्लोक तक दिया। उसके बाद भगवान आगे वर्णन करते हैं 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक, और वो वर्णन है जो ज्यादातर लोगों को इस जगत में प्रिय है, कर्मकांड। कि भगवान कहते हैं कि ठीक है, एक तरफ ज्ञान दे दिया भगवान ने कि आत्मा है, फिर भी अर्जुन तुम्हें लगता है कि चलो आत्मा है तो आत्मा को थोड़ा स्वर्ग इत्यादि में जाना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। तो अर्जुन मैं बता रहा हूं, युद्ध करो, युद्ध करने से तुम स्वर्ग जाओगे। तो कर्म कांड की बात करते हैं कि अगर युद्ध करोगे तुम जीतोगे तो तुम यहां भोग करोगे, हार भी गए तो भी तुम युद्ध करने के कारण तुम स्वर्ग में जाओगे। तो ये भगवान बता रहे कि दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा है। युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अर्जुन का युद्ध ना करने का एक कारण था करुणा, जिसको भगवान ने ज्ञान के आधार पर खंडन कर दिया। अब कर्म कांड के आधार पर वो खंडन कर रहे हैं उसका, जहां अर्जुन कह रहा था कि मुझे पाप लगेगा, अरे मैं इतने सारे लोगों को मार दूंगा, मुझे पाप लगेगा। भगवान कह रहे युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा, युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा। युद्ध करोगे तो जीत गए तो भूमि का भोग करोगे, हाँ अगर मृत्यु हो गई तो स्वर्ग में जाओगे, लेकिन अगर युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। ये कर्मकांड। कर्मकांड का अर्थ क्या होता है? वेदों में, शास्त्रों में कुछ ऐसे विभाग दिए गए हैं जहां लोगों को प्रेरित किया जाता है कुछ करने के लिए, उनको प्रेरित किया जाता है कि आप ये करिए तो आपको ये प्राप्त होगा, आप वो करिए तो आपको वो प्राप्त होगा इत्यादि। तो ऐसे इसको कर्मकांड कहते हैं। कर्मकांड क्या है? बस ये बता देना कि ये करो ये मिल जाएगा, किसी को लालच देना, किसी को लोभ देना या डरा देना, ये कर्मकांड का प्रभाव है। तो उसका भी उद्देश्य है, क्यों शास्त्रों में दिया गया कर्मकांड, क्या आवश्यक है हमारे लिए, नहीं है, और अगर नहीं है तो शास्त्रों का भाग क्यों है? शास्त्रों में हमें केवल वो चीजें दी जानी चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र तो निर्देशिका है, हमारे जीवन को चलाने की मैनुअल है। तो फिर शास्त्र में कर्मकांड क्यों दिया गया और कितना दिया गया? 80%। शास्त्रों का 80% भाग कर्मकांड है। अगर ये आवश्यक नहीं होता तो फिर क्यों दिया जाता शास्त्र में? शास्त्र में है तो हमें पालन करना चाहिए, लेकिन भक्ति की दृष्टि से हम लोग कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं कर्मकांड की। तो कैसे समझना चाहिए? अगर आवश्यकता नहीं तो शास्त्र में क्यों वर्णन है? इसका उद्देश्य है, जब हम भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति के स्तर तक उठने के लिए व्यक्ति को कई स्थितियों को पार करना होता है, जिनमें से एक स्थिति है कर्मकांड की। उसको पार इसलिए करना होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे ये समझ जाए कि इस जगत की कोई चीज़ हमें आनंद नहीं दे सकती। जैसे हम लोग दक्ष की कथा पढ़ते हैं, दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दिया, नारद मुनि ने उनके 10,000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया, उसके बाद और 1000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया, किस आश्रम में रखा ये कहा नहीं गया है। हम लोग पता नहीं 1000 ब्रह्मचारी 10000 ब्रह्मचारी कितना बढ़िया आश्रम होगा वो, लेकिन खैर तो नारद मुनि ने बना दिया। तो उस समय दक्ष ने यही कहा कि जब तक वे लोग पारिवारिक जीवन में आकर कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो वैराग्य को प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए आवश्यक है व्यक्ति के लिए कि वो गृहस्थ बने, गृहस्थ जीवन के कष्टों को अनुभव करे और उसके बाद वैराग्य ले ले, तब सच्चा वैराग्य होगा, क्योंकि पता है कितना कष्ट है गृहस्थ जीवन। तो दक्ष कहने लगे, तो ये कर्मकांड भाग है कि कर्मकांड इसीलिए बना है कि भोग करने दिया जाता है और भोग करके व्यक्ति को पता चले कि कितना कष्ट है, इसीलिए उसके आगे सुख को ढूंढना प्रयास करे। तो जितने भी विभाग शास्त्रों में दिए गए हैं वे केवल जीव को भक्ति के स्तर तक उठाने के लिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत निम्न स्तर पर है, अचानक उसको सबसे ऊंचे स्तर पर लाया नहीं जाता, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं शराबी का, एक व्यक्ति शराब पी के गटर में गिरा हुआ है बाहर, अब आप उसको उठाकर यहाँ पर खड़ा कीजिए और दिखाइए ये जगन्नाथ हैं, ये गौर निताई हैं, इनकी भक्ति करनी चाहिए, क्या समझ में आएगा उसको, वो खड़ा तो रह नहीं पा रहा है। तो फिर उसको क्या किया जाता है, थोड़ा उसको उसका नशा उतारा जाता है, किसी भी मार्ग से पड़पड़ मारो या पानी पिलाओ जो भी है, तो उसका नशा उतारा जाता है, उसको कुछ खिलाया पिलाया जाता है, उसको थोड़ा अच्छा करके फिर लाके खड़ा करके बताइए तो जान जाएगा हाँ ये कृष्ण है। इसी तरह जो भौतिकता के नशे में चूर हैं उन लोगों को कृष्ण भक्ति का संदेश कैसे मिल सकता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मतिर न कृष्ण परतो सतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रताना अदांत गोभीर, जिनकी गोभीर अर्थात जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है तो उनके लिए मतिर न कृष्ण परतो स्वतो वह, उनकी मति कभी कृष्ण में नहीं लग सकती। परतो स्वतो वह, अपने प्रयास से दूसरों के प्रयास से, तो फिर उनको कैसे लाना है। भगवान ने मार्ग दिया कर्मकांड का, जो बहुत ज्यादा भौतिकता में पड़े उनको कुछ नियम बताए जाते हैं, अच्छा आप ये करो आपको ये मिलेगा, अच्छा ये मिलेगा हाँ ठीक है वो कर लेता है, ये यज्ञ करो आपको ये मिलेगा, अच्छा ठीक है ये मिलेगा हमें, तो धीरे धीरे शास्त्र का पालन करने लगता है। फिर जब ये करते करते एक स्थिति आती है कि वो ढूंढता है कि इससे भी परे कुछ होगा, तब वो ज्ञान कांड और फिर बाद में भक्ति में आगे बढ़ता है। इसलिए कर्म कांड का भी उपयोग है, लेकिन उन लोगों के लिए जो सीधे कृष्ण की शरण नहीं आ सकते या नहीं आए हैं, लेकिन जिन्होंने कृष्ण की शरण ले ली है उनको कर्मकांड विभाग की कोई आवश्यकता नहीं। अगर उद्देश्य व्यक्ति का बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर जाना है और वो सीधे पहुंच चुका है 10वें फ्लोर पर, तो क्या वो फिर से उतरकर आकर फिर से चढ़ना चाहेगा। 10वें उस फ्लोर का उद्देश्य है, वो तो पहुंच गया, अब वो क्यों नीचे आएगा। इसी तरह कर्मकांड ज्ञानकांड इत्यादि इनका उद्देश्य भक्ति तक उठाना, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में पहुंच गया है उसको नीचे जाने की क्या आवश्यकता है, फिर से क्यों नीचे जाना, ये तो मूर्खता है। इसीलिए कर्मकांड की आवश्यकता उस व्यक्ति के लिए है जिसने कृष्ण को अभी तक समर्पण नहीं किया है या भक्ति के मार्ग को नहीं समझा। तो भगवान ये कर्मकांड विभाग देते हैं 31 से लेकर 38वें श्लोक तक, और फिर उसके बाद भगवान बुद्धि योग का वर्णन करते हैं। बुद्धि योग प्रभुपाद कहते हैं या भक्ति योग, उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि भगवद गीता के सार को देना है तो सब चीजें वो देंगे इसमें। तो भक्ति योग को भी दे दिया कि भक्ति क्या है, तो उसको भगवान बता रहे बुद्धि योगम तुमाम शृणु, अब तुम सुनो कि बुद्धि योग क्या है। अभी तक तुमने ज्ञान सुन लिया, कर्मकांड सुन लिया, अब भक्ति योग सुनो। तो भगवान 39वें श्लोक से लेकर 52 श्लोक तक भक्ति योग का वर्णन करते हैं, क्या भक्ति है, कैसे रहता है व्यक्ति, कैसे समान रहता है, कैसे विचलित नहीं होता किसी भी अवस्था में, इत्यादि बहुत कुछ वर्णन करते हैं भक्ति योग क्या है, कैसे रहना चाहिए। तो वो सुनने के बाद अर्जुन एक प्रश्न करते हैं कि आपने अभी अभी भक्ति योग के बारे में कहा, ये भक्त होता क्या है, कैसे रहता है, वो बोलता कैसे है, चलता कैसे है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कैसे बोलता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, मुझे सब सुनना है। तो फिर भगवान 53 श्लोक से आगे अध्याय के अंत तक 72वें श्लोक तक ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जिसको भक्त मानना चाहिए। स्थित धीर, जो धीर व्यक्ति है, जो स्थित हो चुका है भक्ति में, ऐसे व्यक्ति का वो वर्णन कर सकते। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसको भगवान बताते स्थित धीर मुनि रुच्यते, कौन है स्थित रहने वाला, उसके सारे वो वर्णन उस विभाग में करते हैं। तो ऐसे अंतिम विभाग में भगवान ने वर्णन कर दिया और भगवान चुप हो गए, सारी भगवद गीता समाप्त। भक्ति का वर्णन हो गया, ज्ञान कांड का हो गया, कर्म कांड का हो गया, भक्त के लक्षण हो गए, सब कुछ हो गया। तो फिर आगे अब अर्जुन तीसरे अध्याय में प्रश्न करेंगे और फिर भगवान आगे विस्तार से इन्हीं विषयों को आगे पूरे विस्तार में वो बताएंगे। तो ये दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है भगवद गीता का, कई हमें बहुत सुंदर संदेश, जैसे भगवान कृष्ण को शरण जाने की आवश्यकता, इस पर बल होता है, या फिर धर्म, सच्चा धर्म क्या है, इसको हमें समझ में आता है। जैसे अर्जुन कह रहे थे मैं अपने गुरु को नहीं मारूंगा इत्यादि, लेकिन सच्चा धर्म है भगवान को समर्पण करना। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म कांड क्या है, ये सब हम इस अध्याय से सीखते हैं। तो ऐसे दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय भगवद गीता का है, जिसमें भगवान ने इतनी सारी चीज़ों को वर्णन किया है। और फिर अब तीसरा अध्याय, इसका वर्णन अगले सोमवार को करेंगे, कि कैसे जो तीसरा अध्याय है वो भी बहुत सुंदर वर्णन, अब कर्म का वर्णन प्रारंभ होगा, फिर कैसे भक्ति में कर्म करने चाहिए इत्यादि इत्यादि, ऐसे आगे के अध्यायों में ये पहले 6 अध्याय वर्णन करेंगे। 7वें अध्याय से फिर भक्ति का वर्णन होगा। हम लोग प्रयास करेंगे हर सोमवार 1 या 2 अध्यायों पर सार को बताकर जल्दी जल्दी 18 अध्याय समाप्त करके फिर उन 18 दिनों का वर्णन प्रारंभ करें, जिसको महाभारत कहा जाता है, जो सही महाभारत है। तो फिर उसका वर्णन प्रारंभ होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी? यस माइक दीजिए। ऑन कीजिए उसको। पहले से रेडी रहती सो वाई इज इट नॉट वर्किंग? ऑन किया उसको? एनीवे आप ऐसे ही बोल दो, छोटा सा रूम है, सुनाई दीजिए। अच्छा प्रश्न, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त बनने के बाद क्यों मारा अर्जुन ने, और भगवान ने क्यों कहा मारने के लिए? ठीक है, भगवान को क्या कहना चाहिए? भक्ति करो, जपा करो, भागवत सुनो, ये तो भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उसमें तो कहा नहीं हत्या करते रहना चाहिए। नौ विधियों में नहीं आता है, तो क्यों किया? बहुत अच्छा है, किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। ये दिखलाने के लिए अर्जुन दो भाग हैं। अर्जुन ने क्यों मारा, पहली चीज भगवान ने क्यों कहा और अर्जुन ने क्यों मारा। जब भगवान ने भक्ति सिखला दी कि भक्त क्या है इत्यादि, फिर अर्जुन को भक्त हो जाना चाहिए था स्थित प्रज्ञस्य, तो फिर क्यों भगवान मारे? भगवान ने जो ज्ञान भगवद गीता का दिया, ये सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका सार ये था कि एक भक्त के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है। श्रेष्ठ कार्य है भगवान की इच्छा को पूरा करना। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, अर्जुन द्रोणाचार्य भीष्म को नहीं मारना चाहता था, लेकिन जब भगवद गीता सुन ली तो अर्जुन ने क्या कहा, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मया च्युतम स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। प्रभुपाद कहते ये भक्त है कौन, करिष्ये वचनम तव, जो भगवान चाहते हैं वो कहना। क्योंकि धर्म क्या है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, सच्चा धर्म वो है जो भगवान ने कह दिया। और अगर भगवान कहते हैं कि मारो, चाहे वो कर्ण को हो या द्रोणाचार्य को हो या भीष्म को हो या किसी भी तरह से हो, वो धर्म है। इस चीज को समझना ये भक्त का कार्य है। तो इसीलिए अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, मैं मोह में था कि मैं आपको ज्ञान दे रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये ठीक है वो ठीक है, मैंने ये नहीं पूछा कि आप बताइए क्या ठीक है, मैंने पहले आपको दिया। तो नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति फिर से वापस आ गई कि मेरा कर्तव्य एक ही है, आपकी सेवा। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युता, ये हुआ आपकी कृपा से, स्थितोस्मि, अब मैं हिलने वाला नहीं हूँ। आपने कहा स्थित धीर मुनि रुच्यते, स्थित व्यक्ति कौन है जो आपकी इच्छा को पूरा करता है, तो अभी स्थितोस्मि। गत संदेह, मुझे कोई संशय नहीं रहा कि मेरी बुद्धि मुझे इस्तेमाल करनी है या नहीं, सिंपल आपने जो कहा वो करना, करिष्ये वचनं तव। तो अर्जुन ने युद्ध इसलिए किया, उसके बाद अगर वो भगवद गीता नहीं सुनता और युद्ध करता तो वो अज्ञान में युद्ध करता, लेकिन अब वो ज्ञान में युद्ध कर रहा है, पूर्ण ज्ञान में, कि मैं मारने वाला नहीं हूं इनको, कृष्ण मार रहे हैं। पहले वो सोचता मैं मार रहा हूं, भगवद गीता सुनने के बाद उसने कहा, अर्जुन ने कहा ये तो कृष्ण मारने वाले हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, तीर में पकड़ सकता हूं, तीर में शक्ति कृष्ण देते हैं। इस ज्ञान में जब अर्जुन ने युद्ध किया वो शुद्ध भक्ति हो गई। तो शुद्ध भक्ति क्या है, हर कार्य भगवान की इच्छा से किया गया कार्य, लेकिन उसमें ये ज्ञान हो कि हम केवल निमित्त मात्र हैं। उसको समझकर जब किया जाता है, फिर आप हत्या भी करो वो भी शुद्ध भक्ति। अर्जुन ने जो किया वो शुद्ध भक्ति, ऑफकोर्स आप हत्या मत करना, अर्जुन ने जो किया वो शुद्ध भक्ति है, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने साक्षात आदेश दिया। तो भगवान का साक्षात आदेश बाकी सारे शास्त्र के आदेश से श्रेष्ठ है। शास्त्र में भगवान ने कुछ भी कहा हो, लेकिन जब सामने खड़े होकर वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कह रहे हैं मारो, ये मेरी इच्छा है, वो अर्जुन के लिए धर्म है। और उस धर्म का जो पालन करता है करिष्ये वचनं तव, वो श्रेष्ठ भक्त। तो ये अर्जुन का भाव हो गया। अब भगवान ने क्यों आदेश दिया, भगवान जब कह रहे हैं कि भक्त को ऐसा होना चाहिए, सबको समान देखना चाहिए, पंडिता समदर्शिना, सबके हृदय में भगवान को देखो, फिर मार कैसे सकते, फिर मारने का आदेश क्यों दिया? ये बतलाने के लिए कि इस जगत में जब तक हम हैं कर्तव्य को त्यागना नहीं चाहिए, कर्तव्य पालन से भगवान की प्राप्ति होती है। कैसा कर्तव्य पालन, वो आवश्यक है, अपने मन से बनाया हुआ कर्तव्य नहीं, शास्त्र के आधार पर गुरु के द्वारा दिया गया कर्तव्य है। तो भगवान ये दिखलाना चाहते थे अर्जुन को कि भले ही भक्त का कार्य ये है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कार्य भक्त का ये है जो मैं कहता हूँ वो करो, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आप इसको करो। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि कैसे सिखाया जाता है। एक बार एक आर्मी में एक ऑफिसर थे, तो वो कुछ लोगों को ट्रेन कर रहे थे, उनके अंदर ट्रेनिंग थी, तो उसने उनको कहा कि चलो यहाँ गड्ढा खोदो, तो गड्ढा खोदा चले गए। थोड़ी देर बाद आए, अरे यहाँ गड्ढा क्यों खोदा, यहाँ गड्ढा खोदो, बंद करो उसको, यहाँ खोदो। अब वो आदमी परेशान हो गया, अरे आपने ही अभी बोला था यहाँ गड्ढा खोलो, ठीक है, उसने वो बंद कर दिया, दूसरी जगह खोदा। थोड़ी देर बाद आया, यहाँ क्यों खोदा गड्ढा, बंद करो इसको, यहाँ खोदो, यहाँ नहीं खोदना। थोड़ा समय हो गया तो कोई एक व्यक्ति देख रहा था, वो परेशान हो गया कि कर क्या रहा है, आकर बोलता है गड्ढा खोदो, वो गड्ढा खोदता है बेचारा और उसको बोलता है कि ये तुमको किसने कहा, दूसरी जगह खोदो। तो उसने उससे पूछ लिया आप कर क्या रहे हो, आप कभी इधर बोलते हो उधर बोलते हो, बेचारा परेशान। बोले मैं उसको सिखा रहा हूँ कि उसका एक ही काम है, आदेश का पालन करो, तो अपना दिमाग नहीं लगाना क्यों कर रहे हैं गड्ढा इधर क्यों खोदना, वो सब नहीं बोला वो करना है बस। तो भगवान भी यही दिखा रहे हैं, जो बोला है उसको कर देना, ये भगवान भक्ति में कर। तो इसीलिए भगवान ने आदेश इसलिए दिया, दो कारण, एक तो भगवान अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते थे, आए थे यहाँ पर, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से, तो अधर्म का नाश करने के लिए, तो वो उद्देश्य की पूर्ति उन्हें करनी थी और अर्जुन को निमित्त बना रहे थे। दूसरा, अर्जुन को ये सिखा रहे थे कि सच्चा कर्तव्य ये है, अर्जुन को ही नहीं अर्जुन के द्वारा हम सबको सिखला रहे थे कि हमारा सच्चा कर्तव्य केवल इतना है जो कृष्ण चाहें वो हम करें, और कृष्ण क्या चाहते हैं वो हमें कैसे पता चलता है, शास्त्र और गुरु के द्वारा। तो बस उतना हम करें, हमारा कर्तव्य पूरा, फिर उसमें हमें किसी की हत्या करनी हो, जैसे उदाहरण के लिए भारत में या किसी भी देश में किसी की हत्या करना ये अपराध माना जाता है, आप हत्या कर दीजिए आपको फांसी की सजा हो सकती है, जेल हो सकता है, जो भी है, लेकिन वही हत्या एक सैनिक करता है उसको पदक दिया जाता है, वो भी हत्या ही कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, वो भी तो मार रहा है, गोली चला रहा है, पुलिस वाला भी कभी कभी मार देते हैं किसी को, तो उनको पदक दिए जाते हैं। एक ही देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं, एक कानून है कि हत्या करेंगे तो हम, हत्या करें तो हमें अंदर करेंगे, और वही सैनिक हत्या करता है तो उसको पदक दिया जाता है, ताली बजाई जाती है, क्यों, क्योंकि सैनिक भी वही हत्या अधिकार में कर रहा है, उसको अधिकार दिया गया, शासन या सरकार उसको अधिकार देती है, तुम्हें अधिकार है मारने का। हाँ, अगर वो अपने अधिकार का अतिक्रमण करता है, वो व्यक्ति घर जाता है छुट्टी पर और उसी बंदूक से जिससे उसने 10 लोगों को वहां पर मारा था, जिससे पदक मिला था, उसी बंदूक से अगर वो घर के पड़ोसी को मार देता है, उसको दंड मिलेगा, क्योंकि वहां अधिकार नहीं। इसी तरह भक्ति में जब भक्त को भगवान ने अधिकार दिया कि तुम मारो, तो उसका मारना वो शुद्ध भक्ति, वो पदक के योग्य है, लेकिन अगर अन्यथा बिना उसके वो मारता तो फिर वो दंड का भागी। इसलिए अर्जुन ने युद्ध किया। और कोई प्रश्न किसी का? अलग अलग समय में अलग अलग संतों ने स्थान के अनुसार, युग के अनुसार संदेश दिए। श्रील प्रभुपाद जैसे संतों ने यह आदेश नहीं दिया कि चुप बैठो और देखो, उन्होंने आदेश दिया कि भगवान की सेवा करो। और जो आदेश या जो संतों ने दिया, जैसे तुकाराम जी इत्यादि, तो उनके आदेश को सही दृष्टि से समझना, उन्होंने गलत नहीं कहा कि चुप बैठो और देखो, तो उनके आदेशों को, निर्देशों को हमें समझना है। तो जो प्रभुपाद ने कहा और जो उन्होंने कहा एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। कभी कभी संतों की बातें अलग लगती हैं और होनी भी चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि एक किसी भी ऋषि के वाक्य समान नहीं होते हैं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नैको ऋषि यस्य मतम प्रमाण, एक भी कभी ऋषि का दूसरे से बात नहीं मिलती, लेकिन सब कहते वही हैं भगवान की भक्ति। तो जो प्रभुपाद ने कहा और जो अन्य संतों ने कहा वो दोनों एक ही बात है, चुप रहो और देखो, इस समय चला जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को त्याग कर बैठ जाए। इसका अर्थ ये है कि वो कर्तव्य को बिना किसी आसक्ति के करें। चुप रहने का अर्थ ये है, क्योंकि जब आसक्ति होती है हम कुछ करना चाहते हैं, हम उसके प्रति उसको उस स्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं या कुछ तो कर रहे हैं। चुप रहने का अर्थ यह है कि आप अपने कर्तव्य को चुपचाप कीजिए। जब आप अपना कर्तव्य करेंगे ये समय चला जाएगा। समय चला जाएगा का अर्थ क्या है? आप अपना कर्तव्य करते करते आगे बढ़ जाएंगे, उस स्थिति के पार हो जाएंगे, क्योंकि आप कर्तव्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। सच्चा कर्तव्य तो वही है। तो इन ऋषि मुनियों का या जो साधु संत हैं, इनका कहने का अर्थ ये नहीं होता कि हम आलसी बने या सब कुछ त्याग दें। इनका कहने का अर्थ ये है कि हम अपने कर्तव्य को करें और बिना आसक्ति के इस रूप में शांत हो जाएं कि इसके फल का मुझे कोई चिंता नहीं, समय आएगा चला जाएगा, मुझे करते रहना, बस ये सच्ची शांतता। तो जब ऐसे रहेंगे निश्चित हम भक्ति को प्राप्त करें। ठीक है, इज इट रेडी? ठीक है, तो अभी भगवान के दर्शन होंगे, कीर्तन करेंगे 5 मिनट और फिर आप सब प्रसाद ग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण।